जब भगवान भगवान कृष्ण के अनुमति से युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो भीमसेन जो है जाते हैं उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लाने के लिए। भद्रावतीपुरी में एक राजा है यौवनाश्व, उनके घोड़े को जो है ना वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बनाना चाहते हैं, तो उसको छीन करके लाते हैं। तो वो जो राजा यौवनाश्व थे, जब उनको पता चला कि युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे हैं और वो पराजित भी हुए भीमसेन से, तो अब उनकी इच्छा हुई कि भगवान कृष्ण के दर्शन करें, युधिष्ठिर के दर्शन करें, हमारा घोड़ा ले जा रहे हैं तो हम भी मतलब जाएं और युधिष्ठिर और कृष्ण के दर्शन करें। तो उन्होंने कहा कि हमारा जितना धन संपत्ति वो भी भगवान कृष्ण की युधिष्ठिर की सेवा में लगा दो, और अपने नगर के जो सबसे बड़े धनवान सुदेव नाम का एक व्यक्ति था उसको कहा कि तुम भी चलो वहां पर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर और कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो सुदेव जो है ना अपनी माता से कहता है, उसकी माता का नाम था जरदगबा, बूढ़ी माता थी, उससे कहते हैं माँ जहां धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण और अर्जुन है वहां राजा मुझे ले जाना चाहते हैं। सुदेवो मातरम प्राह राजा माम ने तुम इच्छति यत्र धर्म सुतो राजा यत्र तो कृष्ण पांडव। तो उसकी माता को बड़ा बुरा लगा, देखो पुत्र कह रहा है कि राजा साहब मुझको वहां ले जाना चाहते जहां युधिष्ठिर महाराज है और कृष्ण है भगवान है, तो माता को तो अच्छा लगना चाहिए। तो उसको बहुत बुरा लगा। अपने पुत्र के इस अप्रिय वचन को सुनकर माता बोली, बेटा तुझे वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। कहां? जहां युधिष्ठिर है और कृष्ण, वहां कहीं। जननी स्वसुतस्येदं वाक्यमाकर्ण्य चाप्रियं प्रोवाच वचनं पुत्र न गंतव्यं कदाचन। क्यों? कहती है पुत्र मेरे जीते जी तुझे इस प्रकार धन का खर्चा नहीं करना चाहिए, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे धन इस प्रकार से खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तात धन के बिना मैं इस संसार में जीना नहीं चाहती हूं। वित्त व्ययो न कर्तव्य मय जीवति पुत्र वित्तहीना हम तात जीवी तुम हो सहे। तो पुत्र ने कहा, सुदेव ने कहा, माँ वहां महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गंगा जी का सानिध्य है, बहुत से संत महात्मा पधारे हुए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ विराजमान हैं, और भी बहुत से ऋषि मुनि आए हैं, अतः माता तुम भी उठो और वहां चलकर बलदेव सहित भगवान गोविंद का दर्शन करो। तत्र भागी रथी गंगा नाना संता समागता स्वयं स भगवान यत्र कृष्णस्तिष्ठति साग्रजः युधिष्ठिरस्य यज्ञेन ऋषियोऽपि समागतां उद्देश्य जननी त्वं हि गोविंदं पश्य च साग्रजम्। तो वृद्धा बोली, देखो बुढ़िया क्या बोली, सुदेव तू ऐसा मत कह, क्या तू ऐसा मत कह, मैं हस्तिनापुर को नहीं जाऊंगी, मैंने पहले भी कभी देवता और धर्म की बात नहीं सुनी, मैं देवताओं की धर्म की बात नहीं सुनना चाहती, मैंने कभी नहीं सुनी। मैं बदय सुदेव तुम न गमिष्याम्य हम पुरम देवो ना च धर्मोपि तदपूर्व कदाचन। और क्या कहती, मेरे पिता और पति ने भी कभी धर्म नहीं किया, धर्म की बात मैं नहीं सुनना चाहती। क्यों? न मेरे पिता ने कभी धर्म किया, न मेरे पति ने कभी धर्म किया। पुत्र किसके उपदेश से तू धन का विनाश करने के लिए तैयार हो गया है? भर्त्राने विकृतो धर्मो मत पित्रा तू कदाचन कश्योपदेशा तुम पुत्र प्रवृत्तोपि प्रवृत्तो से धन क्षये। ये जो यज्ञ दान आदि कर्म है इन सबको मैं ठग विद्या समझती हूं, ये सब ठग विद्या है। मेरी समझ से तो वेद भी अर्थवाद रूप है और ब्राह्मण लोगों को बहकाने के लिए हैं। ये सब वेदों की बातें ब्राह्मणों को बहकाने के लिए होती हैं। छोड़ो, पैसा क्यों बर्बाद करते हो अपना? देखा, सर्वं प्रतारणं मन्ने यज्ञदानादिकाग्र्यां अर्थवादो मतो वेदो ब्राह्मणालोक वंचकं। अपनी जान को जोखिम में डालकर जो धन प्राप्त किया गया है, जान जो है ना, अपने जीवन को संकट में डाल करके जो धन पाया है, उसे कौन नष्ट करना चाहेगा? हमारे कुल में किसी को भी ये धर्म सुखदायी नहीं हुआ, धर्म से कभी सुख नहीं प्राप्त हुआ हमारे कुल में, समझे? प्राणे व्ययेन यल्लब्धं धनं तत्को नूनाशयेन अस्माकं चाकुले धर्मो न कस्यापि सुखव्रतः। अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अतः किस प्रकार धर्म का अनुष्ठान कर सकती हूँ? साथ ही जो काम मैंने आज तक नहीं किया उसे मैं नहीं करूंगी, मैं ये सत्य कह रही हूँ। क्या काम नहीं किया? दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, मैं नहीं करूंगी ये काम। वृद्धाहम सांप्रतम जाता कंकतम धर्मम समाचरे अकृतम ना करे श्यामी हे तत्सत्यम बचो मम। तो माता की ये बात सुनकर सुदेव राजा के पास गए और हंसी की जो है ना बातें बताने लगे कि मेरी माँ जो है किस प्रकार से बोल रही है। सुदेवो निप्रतिम्ययम् प्रत्युवाच वचो रम्यम् नपहास्यकरम् परम्। सुदेव ने राजा से कहा कि माताजी, धर्मराज युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ को देखने के लिए मेरे साथ नहीं चल रही हैं, क्योंकि वे घर को नहीं छोड़ना चाहती हैं। नायाते जननी देव मया सह महाक्रतुम् धर्मराजस्य तम द्रष्टुम् न गृहम् परिमुञ्चति। तो सुदेव की बात सुनकर के राजा खुद उस बूढ़ी को बुलवा कर उसे मनोहर वचनों से समझाने लगे जिससे उसका कल्याण हो जाए। राजा ने खुद समझाया उस बुढ़िया को। राजा तस्य वचनं श्रुत्वा समानी जरन गवाम प्रोवाच वचनम रम्यम हितम तस्याय था भवेन। राजा ने कहा, देवी, सभी लोग वहां जा रहे हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर और माधव हैं, तुम भी मेरे साथ हस्तिनापुर को चलो, वहां पुण्य का अनुष्ठान करो। सर्वे लोका तत्रयान्ति यत्रतो धर्म माधव मयैव सहिताया हि कुरु पुण्यं गजः वये। वहां भगवान श्री कृष्ण और वधुओं से घिरी हुई महारानी रुक्मिणी भी विद्यमान है और भी बहुत सी सम्माननीय सती साध्वी नारियां वहां आई हुई हैं, चलो उनका दर्शन करो। तत्र तिष्ठति कृष्णोऽपि रुक्मिणी चां वधूवृतां अन्यास पावना नार्यास तत्र मान्या समागतां। सत्पुरुषों के दर्शन मात्र से प्राणियों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन कहता है? राजा यौवनाश्व। किससे कह रहे हैं? उस बुढ़िया से। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई बात नहीं है। सताम दर्शन मात्रेण विलियम जानति देहिनाम पातकानी समंग्राणी नात्रकारिया विचारण। तो वृद्धा बोली, क्या बोली? राजन, मैं हस्तिनापुर नहीं चलूंगी, क्योंकि मेरे जाने से मेरा धन लुट जाएगा। मेरी बहुएं दुष्ट स्वभाव की हैं, वे मेरे घर का विनाश कर देंगी। अगर मैं जाऊंगी घर छोड़ करके तो मेरी बहुएं क्या करेंगी? घर का नाश कर देंगी। मैं नहीं जाऊंगी घर छोड़ करके। ना गमिष्यामि राजेंद्र द्रव्यम ममे गमिष्यति वधु गणश्चमे दुष्टो नाशयिष्यति मन गृहम। इस समय मेरे खेत में गेहूं पके हुए खड़े हैं, समझे? तो वे सब चौपड़ हो जाएंगे गेहूं अगर मैं चले जाऊंगी तो, और ग्वाले मेरे मक्खन आदि का सर्वनाश कर डालेंगे। गोधूमा परिपक्वा में क्षेत्र तिष्ठन्ति साम्प्रतम नवनीतम च गोपाव संक्षिष्यन्ति मामकम। और मेरे नौकर और नौकरानियां भी विकट हैं, वे जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे, सब काम पड़ा रह जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। मैं ही उनसे काम कराती हूँ, मैं चली जाऊंगी तो नौकर नौकरानी सब चले जाएंगे घर छोड़ करके। राजन ये घर मेरे सहारे टिका हुआ है इसमें संदेह नहीं है, मैं चला रही हूं पूरा घर। दास दासी गणो रौद्रो गमिष्यति यथागतम मदाधारम गृहमिदम स्थितम राजन संशयः। मुझे श्री कृष्ण से क्या काम है, है? और धर्मराज से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे श्री कृष्ण और युधिष्ठिर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, उस तरह मैं भी अपने घर के कामों में लगी हुई हूं उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं और मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। कृष्ण युधिष्ठिर अपने काम में लगे, मैं अपने काम में लगी हूं मम कृष्णेन किम कार्यम न मे धर्मेण सांप्रतम यथा सुकर्मणि जग्रा कृष्ण धर्मादय स्थितम तथा सुग्रह कार्येषु सावधानास्मि भूमि पैम। राजन आप नादान हो जो राज काम को छोड़ करके, राज्य का काम छोड़ करके व्यर्थ ही हस्तिनापुर को जा रहे हो, क्योंकि वहां जाने से आपके धन का नाश हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। क्यों जा रहे हो भवान राज्यम परित्यज्य वृथा गच्छति तत्पुरम बालोति द्रव्यहानिस्ते भविष्यति न संशयम्। राजन मैं प्राणों का चला जाना उत्तम मानती हूं, प्राण चले जाएं तो अच्छा है, परंतु धन का विनाश मुझे किसी प्रकार सहन नहीं होगा। क्या समझे प्राण चले जाए तो ठीक है, ये धन नहीं जाना चाहिए मेरा, समझे कितने अच्छा सिद्धांत है ये। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, हैं? हाँ, क्योंकि धन की हानि होने से सभी लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है। गता प्राण वरम मन्य न धनम भूपते क्वचिन सर्वलोकस्य संक्लेशो भविष्यति नराधिपम्। तो ये है उदाहरण किस चीज का, इस श्लोक में है विषादम, विषाद करती है, चिंता करती है। तो बूढ़ी रानी इस प्रकार कह रही थी, राजा यौवनाश ने उसे पकड़कर बांध लिया क्या समझे, पकड़ के बांध लिया और उस बूढ़ी को डोली में चढ़ाकर अपने साथ ले गए, बांध करके डोली में लेकर चले। एवं ब्रवाणाम नृपतिर गृहीत्वा ताम जरंगमाम बद्धा तत्र रुदंतीम चा डोलामारोप्यताम ययम्। उसमें राजा यौवराज आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए बारंबार तृष्णा की निंदा करने लगे कि कितनी तृष्णा कितनी बेकार होती है। उन्होंने वृद्धा के चरित्र और चित्त व्यामोह का वृत्तांत भीमसेन से कहा और कहते हैं भीमसेन आशा बड़ी बलवती होती है, वह एक ऐसी आश्चर्यमयी साकल है जिससे मुक्त हुए प्राणी वेग पूर्वक दौड़ते हैं, किंतु जो उससे बने हैं वे पंगु की भांति एक जगह पड़े रहते हैं। ये साकल है मोह का, वृद्ध हुए प्राणी के बाल पककर गिर जाते हैं, दांत जीर्ण होकर टूट जाते हैं, आंखें और कानों की शक्ति जाती रहती है, परंतु एक तृष्णा ऐसी है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। अब ये औरत बूढ़ी हो गई है, सब तो उसका क्या हो गया, कमजोर पड़ गया है सब कुछ, तृष्णा कितनी बलवान है इसकी। तृष्णा से महान दुख होता है और उसका त्याग कर देने से परम आनंद प्राप्त होता है। जीर्यंती जीर्यता केशा दंता जीर्यंती जीर्यता चक्षु श्रोते च जीर्यन्ते कृष्णाय काना तु जीर्यते कृष्णाया परमं दुःखं यत्त्यागात् परमं सुखम्। तो ये हमने चर्चा की किसकी, विषादम विषाद, कृष्णा आशा चिंता विषाद, ये सब जो ना तमोगुण के लक्षण है, छोड़ता ही नहीं है। देखो बुढ़िया छोड़ नहीं रही है उस चिंता को, चाहे कोई कितना ही समझाए, नहीं मेरे बहुएं जो ना वो कर देंगे नुकसान कर देंगे, मेरे नौकर चाकर हैं वो चले जाएंगे, गेहूं का धान वो जो है ना नष्ट हो जाएगी, और मक्खन है वो ग्वाले छीन ले जाएंगे उठा ले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे नहीं जाना। अच्छा अब क्या है, मदम, मदम का मतलब क्या है, घमंड, घमंड नहीं छोड़ता है, सब कुछ जो है ना उसका छूट रहा है, सब कुछ न सुना रहे तो भी घमंड को नहीं छोड़ता है। जैसे रावण घमंड नहीं छोड़ रहा है, है? देखो राम के द्वारा उसके सब भाई मारे जा रहे हैं, उसके सब पुत्र मारे जा रहे हैं, उसकी बड़ी बड़ी सेनाएं मारी जा रही हैं, तो भी घमंड नहीं छोड़ रहा है, क्या कि नहीं मैं राम को मारूंगा, और मर गया, और मरते मरते भी घमंड नहीं छोड़ा उसने, है ना। ये है, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, असुर है। राम के सामने सिर नहीं झुकेगा, सिर चाहे कट जाए लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे, ये घमंड है। हिरण्यकश्यपु का घमंड, नरसिंह भगवान आए खंभे से प्रकट हुए तो घमंड से सोचता है ये विष्णु जो है अभी ऐसी माया दिखा रहा है, ऐसा रूप धारण किया है, ओहो मेरे सामने बस थोड़ी पाएगा, अब मेरे सामने आ गया देखता हूं। और फिर भगवान के ऊपर झपटा तो भगवान ने पकड़ लिया, और जब छोड़ दिया भगवान ने तो भगवान तो खेल रहे थे, और सोचता आ मेरे से डर करके छोड़ दिया है, मुझसे डरता है तो मरते मरते भी घमंड नहीं छोड़ा, आखिरकार भगवान के हाथों मारा गया लेकिन घमंड नहीं छोड़ता। तो रावण हिरण्यकश्यपु हैं। फिर एक और घटना है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक कथा सुनाई, एक कथा सुनाई कि एक व्यक्ति है जो कि अपने वंश में जो लोग हुए हैं तो उनका जो है ना उसको बड़ा वो है गौरव है, बड़े गौरव के साथ कहता है देखो ये कुआं जो है मेरे दादों परदादों ने बनाया है, मैं इसी कुएं का पानी पीता हूं और किसी का पानी नहीं पीता हूं। अब आखिर एक दिन क्या हुआ, वो पानी सड़ गया, कुएं का पानी सड़ गया हाँ, और उसके घर के आदमी बीमार होने लगे, लेकिन नहीं वो घमंड जोड़ता ना ये हमारे दादा परदादों का कुआं है हम इसी का ही पानी पिएंगे, और एक एक करके उस घर के लोग मर रहे हैं, उसके बच्चे मर गए, उसकी पत्नी मर गई हैं, लोग कहते हैं अरे भैया इस कुएं का पानी मत पी ये सड़ गया पानी, लेकिन कुएं के पास ही वो बैठ गया कि नहीं मैं इसी कुएं का पानी पीऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इस कुएं को। तो ये क्या है, घमंड छोड़ता नहीं, ये हमारे बाप दादों का बनवाया हुआ कुआं है हम इसी का पानी पिएंगे, ये घमंड है। और घमंड क्या है, हम ब्राह्मण खानदान के हैं, अब ब्राह्मण की योग्यता तो कुछ भी नहीं है, अरे ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो पंडित हुए हैं उनका खून हमारे शरीर में है, क्या समझा है, हमसे कौन शास्त्रार्थ कर सकता है बिल्कुल अशिक्षित, लेकिन अपने वंश के जो हैं जो बड़े बड़े पंडित हुए हैं उनका जो है ना उसको बड़ा घमंड है, घमंड नहीं छोड़ता है। तो ऐसे एक गांव में बहुत से ब्राह्मणों का परिवार था जिसमें कि उनको शिक्षा बिल्कुल नहीं है, अशिक्षित हैं, लेकिन हमारे खानदान के बड़े बड़े पंडित हुए हैं कौन हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है, बस इसी घमंड में डूबे रहते हैं। तो एक व्यक्ति जो है ना जो बड़ा दुखी होता था इनके घमंड को देख करके, तो सोचा कि किसी दूसरे गांव से एक विद्वान को बुलाऊं और शास्त्रार्थ करा दूं, इनका घमंड तो दूर हो जाए। तो उन गांव वालों ने सुना कि भाई एक विद्वान ब्राह्मण आ रहा है शास्त्रार्थ करने के लिए, तो सब लोग अपने दादा के पास गए, वहां का जो दादा था, अरे दादा वो तो उस गांव से एक बड़ा पंडित आ रहा है शास्त्रार्थ करने के लिए, हम लोग कैसे उससे शास्त्रार्थ करेंगे। वो कहता अरे तुम चिंता नहीं करना, देखते रहना मैं कैसे बात करता हूं, वो मेरे सामने बात नहीं कर पाएगा। अब सब के सब मूर्ख जो हैं सभा में बैठ गए, और वो विद्वान ब्राह्मण आया वहां, तो ये पहले से जमे थे बड़े ऊंचे आसन पर हैं, और घोर मूर्ख महामूर्ख और बैठे बड़े आसन पर है ना। तो विद्वान ब्राह्मण ने सोचा चलो कुछ शास्त्रार्थ करूं, तो शास्त्रार्थ के लिए कुछ बात शुरू करते हैं कि भाई बात का फिर जवाब दें, फिर उसका जवाब दें, इस तरह शास्त्रार्थ करें। तो उसने पूछा कस्तुम, कस्तुम का मतलब आप कौन हो, है ना, आप कौन हो, तो अब बताओ भी आप कौन हो। तो कोई व्यक्ति विद्वान होता है, है? तो कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है वो कहता है मैं मनुष्य हूं, कोई कहता है कि मैं इस नाम का व्यक्ति हूं, मैं इस गांव का रहने वाला हूं, इसका लड़का हूं और भारतीय हूं ये वो, है ना। लेकिन जो व्यक्ति देहादम बुद्धि से ऊपर उठता है तो वो कहता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, सनातन जीवात्मा हूं, है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न के कई उत्तर होते हैं कस्तुम, लेकिन उसको तो समझ में आया नहीं कि क्या बोला, बोला कस्तुम, तो उसने उसने जवाब दिया, तो क्या जवाब दिया, खस्तुम गस्तम घस्तम चस्तम छस्तम जस्तम, उसने पूरी वर्णमाला दोहरा दी जवाब में, कस्तम के जवाब में है? अच्छा, अब वो पंडित जो था, असली पंडित था, वो समझ गया कि तो मूर्ख है और जितने लोग बैठे हैं सब मूर्ख हैं। अब इनके बीच में अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं मूर्ख हूं, इसलिए वो दूर से प्रणाम करके चला गया। और वे जितने मूर्ख लोग थे वो कहते, हाँ देखा हमारे दादा ने कैसा जवाब दिया है? वो पंडित बात नहीं कर सकता, अरे हम लोग बड़े ऊंचे खानदान के पंडित हैं, बड़े बड़े पंडित हमारे खानदान में हुए हैं। तो ये जो है मदम है कि मदम, मद को छोड़ता नहीं है कोई व्यक्ति। तो ये तमोगुणी जो है ना, ये लक्षण है। तो इस अभी हमने पांच लक्षणों की चर्चा की है कि जो व्यक्ति तमोगुणी होता है वो इन पांच चीजों को छोड़ता नहीं है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? बहुत अच्छा, नायक हरि प्रभु कह रहे हैं कि यहाँ पर भी मंदिर में भी आते हैं बहुत से मूर्ख लोग, तो भगवान के सामने अकड़ करके चलते हैं, अकड़ करके खड़े होते हैं, सिर नहीं झुकाते भगवान के सामने कि हम छोटे हो जाएंगे। तो भगवान के सामने भी जो है वो झुकते नहीं है, प्रणाम नहीं करते हैं, अकड़े रहते हैं, है ना? तो ये जो है मदम है, मतलब छोड़ते नहीं है, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं है? कि उनको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और इसमें बहुत ही अनिश्चित है और बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य का जीवन है? राधा कृष्ण का भजन कर लो, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया, जान बुझ करके जहर खाया, क्यों? राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, है ना? लेकिन वो अपने मद को छोड़ते नहीं है, घमंड को छोड़ते ही नहीं है, है ना? तो ये भी एक उदाहरण है। और कोई? हाँ, तो अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, ये पांच जो प्रकार की चर्चाएं हमने की हैं, पहली है निद्रा, कोई व्यक्ति निद्रा को छोड़ता नहीं है, इसका उदाहरण हमने कौन सा दिया? कुंभकर्ण का, है ना? निद्रा को नहीं छोड़ रहा है, है? और राक्षसों ने कितने कितने उपाय किए, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, चंदन का लेप लगाया और बड़ी कोमल कोमल प्रार्थनाएं स्तुति की, जब नहीं जगा तो जोर जोर से गर्दना करना शुरू किया, फिर नहीं जगा तो फिर क्या किया, शंख बजाना शुरू किया, नहीं जगा तो धौंसे पड़ाव बजाना शुरू किया बहुत जोर जोर से, फिर भी नहीं जगा तो फिर लक्कड़ा उसके शरीर में मारना शुरू किया, फिर भी नहीं जगा तो मुदगर मारने लगे उसके शरीर में, है? फिर भी नहीं जगा तो उसके शरीर में हाथियों को चलाना शुरू किया, 10,000 राक्षस थे, फिर कांटे की मुदगर मारने शुरू किए, है ना? लेकिन उसके श्वास से धकेले जाकर के वो ही बेचारे दूर ठेल दिए गए, कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी, है ना? फिर अपने कपड़े कस के बांधे 10,000 राक्षस इकट्ठे मिल करके, कुंभकर्ण को जगा नहीं पा रहे हैं, है? और इतना शोर किया उन्होंने कि पक्षी उड़ करके गिर जाते हैं, पक्षी भागते हैं डर के मारे, लेकिन उड़ते उड़ते गिर जाते हैं, इतना भयानक शोर था, लेकिन कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी, है ना? आगे चल करके फिर क्या है, हाथियों को, हजारों हाथियों को उसके शरीर में जब चलाया तब कुछ कुछ स्पर्श का अनुभव हुआ उसको कि अरे कोई जगा रहा है मुझे, तब वो जागा, है ना? तो निद्रा का उदाहरण दिया हमने। इसके बाद दूसरा उदाहरण, भय का उदाहरण क्या दिया हमने, भयम। भयम का उदाहरण मैंने क्या दिया, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शर्म करता है ना, और सामने आता नहीं है, सामने कोई बात नहीं बताता है ना, डर के मारे कुछ सुनता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ काम नहीं करता है, तो डर के मारे है जो ना सब काम बंद कर देता है, अपने कर्तव्यों को ही बंद कर देता है और बताना भी नहीं चाहता है। तो ये भयम जो है ना, ये उदाहरण दिया। इसके बाद फिर क्या है तीसरा, शोक। तो शोक का उदाहरण क्या दिया मैंने, राजा सुयज्ञ की रानियां शोक के कारण अपने सब काम ही बंद कर दिए, और शोक करने से फिर क्या फायदा, शोक करना चाहिए लेकिन उसके मुर्दा जो उसका शरीर है उसको जलने नहीं दे रही है ना? आगे चल कर क्या होगा, शरीर से बदबू आएगी, सड़ेगा, है ना? तो इस प्रकार से भी कोई व्यक्ति शोक के कारण बहुत से काम बंद कर देता है, है कि नहीं? तो ऐसे लोग देखे जाते हैं शोक के कारण वो माला जपना बंद कर देते हैं, अपने सब नियम तोड़ देते हैं शोक के कारण। अरे अगर कुछ दुर्घटना घट जाए तो तुम भजन क्यों बंद कर देते हैं, माला जपना क्यों बंद कर देते हैं? लेकिन तमोगुणी व्यक्ति है, शोक के कारण वो बहुत से नियमों को अपना तोड़ देते हैं शोकम। इसके बाद क्या है? विषादम। तो विषाद का उदाहरण क्या दिया मैंने? हाँ, भद्रावतीपुरी में राजा यौवनस्थ थे, वो युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं और अपने धन को भी ले जाना चाहते हैं वहां पर उनके सेवा में, और सुदेव नाम का जो धनवान व्यक्ति है उसको कहते हैं कि तुम भी चलो वहां पर युधिष्ठिर और कृष्ण की सेवा में। तो उसकी माता बूढ़ी है जरद गवाह, तो वो कितने तर्क देती है, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या क्या तर्क देती है वो? हमारे पति और पिता ने कभी धर्म नहीं किया, हम धर्म नहीं करेंगे। और क्या बोली? वेदों में जो बातें लिखी हैं ये ठगने के लिए हैं, ब्राह्मण लोग भी ठगने के लिए ये सब धर्म की और दान की बात करते हैं, हैं? और क्या बोली? मेरी बहुएं घर का विनाश कर देंगी और मेरे नौकर और नौकरानियां भाग जाएंगे, सब काम कुछ काम नहीं होगा, मैं ही केवल घर को चला रही हूं। और मक्खन जो है ना, जो ग्वाले हैं वो हमारे घर का मक्खन चुरा लेंगे। युधिष्ठिर कृष्ण अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से तर्क दिए। आखिरकार राजा ने भी समझाया तो कहती, राजा से भी कहती कि तुम क्यों जा रहे हो, अरे प्राण चले जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन धन नहीं जाना चाहिए, हैं? तो फिर राजा ने क्या किया, बंधवा करके उसको डाल दिया पालकी में, चल। इस तरह से विषाद की चर्चा की हमने। फिर मदम, घमंड, घमंड नहीं छोड़ता है। इसकी उदाहरण हमने क्या दिए? एक तो रावण का उदाहरण दिया, रावण घमंड नहीं छोड़ता है, हैं? उसके पुत्र मारे जा रहे हैं एक एक करके, उसके भाई मारे जा रहे हैं एक एक करके, उसके योद्धा मारे जा रहे हैं, तो भी मैं राम को मार सकता हूं, वो घमंड नहीं छोड़ रहा है। और हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान के सामने घमंड नहीं छोड़ रहा है ना, और सोचता है कि मैं इनको मार डालूंगा नरसिंह भगवान को, और मारा गया उनके हाथों, लेकिन घमंड छोड़ा नहीं उसने मरते मरते। और उदाहरण क्या दिया हमने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कथा है? एक व्यक्ति जिसके बाप दादों ने कुआं बनवाया, उस कुएं का पानी मैं नहीं छोड़ूंगा, इसी कुएं का पानी पीऊंगा। उसे घर के सब लोग मर गए, नहीं तो भी कुएं में धरना देकर के बैठा है कि मैं इसी कुएं का पानी पीऊंगा, हमारे बाप दादों का बनाया हुआ कुआं है ये घमंड है। और घमंड का उदाहरण दिया हमने पंडित, हाँ पंडितों की जो है ना खानदान में कुछ ब्राह्मण लोग पैदा हुए जो कि अशिक्षित थे, उनको घमंड है कि हमारे खानदान में जो बड़े बड़े पंडित हुए उनका खून हमारी नसों में बह रहा है, इसलिए हमसे कौन शास्त्रार्थ कर सकता है, और अक्षर एक अक्षर नहीं जानते हैं। और जो असली पंडित आया उसने जब पूछा कस्तुम, कि तुम कौन हो, तो क्या उत्तर दिया उसने? खस्तम गस्तम घस्तम चस्तम छस्तम मस्तम फस्तम पस्तम, सब तरह की मरणमाला उसने दोहरा दी, है ना। और वो जो विद्वान था उसने समझा कि ये मूर्ख है, और इस सबके सब मूर्ख बैठे हैं सभा में, तो मैं मूर्ख हूं अगर यहाँ रुकूंगा, तो दूर से हाथ जोड़कर ये चला गया और सब मूर्ख बोले देखो हमारा दादा कितना विद्वान है, वो विद्वान, वो इतना बड़ा विद्वान हार गया हमारे दादा से। इस प्रकार से जो है घमंड को छोड़ते नहीं है। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, श्री गोंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
गौर हरे
राम हरे राम 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 हरे हरे
राधा पाठ सखे जय हो
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
जय हो जय हो
हरे कृष्ण हरे